ಮನಸಾದಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ಮನಸಾದಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಜಯೋ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ
हरे कृष्ण। तो आज का श्रीमद् भागवतम कथा में आए सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज इस्कॉन का हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी जलदूत यात्रा करके अमेरिका के लिए प्रस्थान किए थे। तो आज उसकी पूरा इस्कॉन में और खासकर कलकत्ता में 50वीं सालगिरह गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। तो आज के समय को हम लोग कुछ समय श्रील प्रभुपाद जी की जो जलदूत यात्रा है तो उसका चर्चा में और बाकी शेष समय को जो वर्तमान श्रीमद् भागवतम का श्लोक है तो उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का दिन जो कि 13 अगस्त 1965 श्रील प्रभुपाद जी एक सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी जो कि बॉम्बे में स्थित है तो वो एक मालवाहक जहाज सामान ले जाने के लिए जो उपयोग में लाया जाता था तो उसमें प्रभुपाद जी को एक पैसेंजर टिकट फ्री में श्रीमती सुमती जो कि एक अच्छी महिला थी जो कि शीला प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम की छपाई के लिए भी उन्होंने लक्ष्मी दिया था तो उनके टिकट अरेंज करने से शीला प्रभुपाद जी जलदूत यात्रा कर सके। तो आज ये जो उत्सव है तो कलकत्ता में बहुत भारी स्तर पे मनाया जा रहा है। तो वहाँ पे इस्कॉन अथॉरिटीज़ हैं, सभी सन्यासी प्रभुपाद शिष्य गुरुवर्ग सभी लोग उपस्थित हैं। तो लगभग 15,000 लोगों का वो अनुमान करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेशन या भाग ले सकेंगे और इसको वे कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल गैदरिंग के रूप में सबसे ज़्यादा देश विदेशों से आए भक्तों के स्वरूप में इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड के लिए दर्ज किया जाए। तो एक तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी का ब्रॉन्ज से बना हुआ जो मूर्ति है और जलदूत है तो उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और बाकी प्रवचन वगैरह रहेगा, जलदूत के बारे में रिमेम्बरेंस रहेंगी और ये कल्चरल प्रोग्राम नाटक ड्रामा ये सब रहेगा। और मायापुर से, वैसे तो मायापुर में फ्लड आया हुआ है तभी भी वहाँ से भक्तों को लाने के लिए क्योंकि वो अलग अलग देशों से हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। और बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं सब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी वे भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और काफ़ी जो हस्तियां हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी लोकल प्रशासन सभी लोग कार्यक्रम में आएंगे। तो हम यात्रा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो 13 अगस्त को प्रभुपाद जी यात्रा शुरू किए तो प्रभुपाद जी के लिए अलग से कैबिन दिया गया था तो कैप्टन का नाम था अरुण पांड्या जी तो वे अपनी उनकी पत्नी भी साथ में थी। 14 अगस्त को एक ही दिन बाद जब शिप जो जहाज है वो पहुंचा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो वहाँ पे शिला प्रभुपाद जी को सी सिकनेस बोलते हैं, मतलब समुद्र में बीमारी वो शुरू हो गया, सिर दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, जी मन घबराना, इस प्रकार से। तो पहले दिन से संघर्ष शुरू हो गया। तो 14 के बाद थोड़ा सा रिकवरी हुआ, तो 19 तारीख को प्रभुपाद जी का जहाज पहुंचा श्रीलंका में। वहाँ जाके थोड़ा सा कैप्टन ने शहर में घुमाया प्रभुपाद जी को, तो थोड़ा सा ठीक अनुभव करने लगे। तो 20 तारीख को जन्माष्टमी था, 20 अगस्त को, तो प्रभुपाद जी ने जो भी क्रू मेंबर थे, जो शिप वाले स्टाफ था जो भी, तो उन सबको कृष्ण भगवान के बारे में कुछ प्रवचन दिया और अपने हाथ से स्वयं प्रसाद बनाया और प्रसाद वितरित किया। और फिर अगले दिन श्रील प्रभुपाद जी का जन्म उत्सव था, तो प्रभुपाद जी अकेले ही थे उसके लिए, 21 अगस्त को। उसके बाद 23 अगस्त को प्रभुपाद जी का समुद्र पहुंचा अफ्रीका के पास रेड सी में। तो वहां पे 2 दिन लगातार प्रभुपाद जी को बहुत भारी मात्रा में हृदय में दर्द और सिर चक्कर आना, बहुत पीड़ा हो रहा था। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर ये पीड़ा इस प्रकार से कायम रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं। और प्रभुपाद जी को इसी दौरान 2 बार हृदयघात हुआ, मीन्स हार्ट अटैक हुआ। और प्रभुपाद जी जो कि सारा अपना शक्ति ले रहे थे उस समय, वे प्रभुपाद जी श्री चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी से ही श्रीला प्रभुपाद जी अपने यहाँ पे बोल रहे थे कि वृंदावन से बहुत बिरह अनुभव कर रहे हैं, उनके जो विग्रह हैं गोविंद जी, मदन मोहन जी और राधा दामोदर जी, तो उनको काफ़ी वो क्या कहते हैं उनसे बिरह महसूस कर रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत से ही प्रभुपाद जी को शक्ति आता था। तो उसी 2 दिन के बाद में श्रील प्रभुपाद जी को भगवान स्वप्न में आए। भगवान अनेक अनेक रूपों में थे, अपने अलग अलग रूपों में थे, तो वो भगवान खुद ही प्रभुपाद जी का नाव चला रहे हैं और बोल रहे कि तुम चिंता नहीं करो, मैं ही तुम्हारा ये जहाज का वाहक हूँ, मैं ही तुमको ठीक ठाक से पहुँचा दूँगा। ऐसे करके थोड़ा सा ठीक हुआ और फिर 1 सितंबर तक ठीक ठाक चलता रहा। स्यूज कैनाल एक जगह आती है, तो वहाँ पहुँचे प्रभुपाद जी। और उसके बाद लगभग 9 सितंबर के आसपास अटलांटिक महासागर, तो बहुत उसका उग्र रूप रहता है, तो 24 घंटे का उसका यात्रा होने के बाद कैप्टन ने कहा कि पूरे जीवन काल में उन्होंने पहली बार देखा है कि अटलांटिक महासागर इतना शांत रूप से है। क्योंकि वो एक बार जो परीक्षा आई, देखिए भक्तों को क्या है कि भगवान का सेवा करने के लिए भगवान परीक्षण करते हैं, अब श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त को भी इतना परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये तो मार्ग इस प्रकार से है, तो भगवान का सेवा करने के लिए या भगवान का आज्ञा पालन करने के लिए, आप देखेंगे भक्तों के जीवन में काफ़ी कठिनाइयां आती हैं। तो क्यों ऐसे है? क्योंकि क्या है कि कठिनाइयों के समय जीव भगवान पे आश्रित हो जाता है, निर्भर हो जाता है, पूरा हाथ उठा देगा। अब द्रौपदी जी का भी एग्जांपल लीजिए, तो वे पहले वस्त्ररण का जो लीला है, तो उसमें वे पहले स्वयं से जोर लगा रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन पहले एक हाथ को छोड़ दिया, फिर वो देख रहे कि ये तो कोई उपाय नहीं होगा, तो सबसे प्रार्थना कर रही हैं जो भी वहाँ पे अतिरथी महारथी सब लोग बैठे थे, उनके पति बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोण बैठे थे, लेकिन तो लास्ट में वो पूरा भगवान को याद करके पूरे दोनों हाथ से हाथ निवेदन कर दिया, तो भगवान तुरंत आके रक्षा किए। प्रभुपाद जी इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अथाह भगवान से जो भावना है और जो प्रार्थना पूर्वक है इतना गहरे में, आगे हम चलते हैं। तो प्रभुपाद जी इसी दौरान में 2 अपने हृदय से निकाले हुए ये जो है ना कविताएं लिखी प्रभुपाद जी ने, बंगला में लिखी थी, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे उनको हमारा शुद्धिकरण के लिए, कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त का भावना होता है, किस प्रकार से हम लोग को प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि हम देखिए भजन तो कर रहे हैं और हरि नाम ले रहे हैं, किंतु वो उचित चेतना में उचित भावना में अगर किया जाएगा तो फल देगा, तो बोलते हैं कि बहुनाम जन्मनाम यदि हरे श्रवण कीर्तन तबूतु ना पाया कृष्ण प्रेम धन। तो वो जो मानसिकता है, वो जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में असहाय, असहाय होना, हेल्पलेसनेस, तो वैसा जीव अगर महसूस करेगा तो हार्दिक भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान तो सबसे हमसे नज़दीक भी हैं, तो आत्मा परमात्मा सबसे नज़दीक है और भगवान सबसे दूर भी हैं। वो कहाँ बैठे हैं, वे लोग गोलोक वृंदावन में बैठे हैं, हम लोग यहाँ भौतिक संसार में हैं। तो भगवान सबसे नज़दीक भी हैं, सबसे दूर भी हैं, सबसे छोटे भी हैं, सबसे बड़े भी हैं, वगैरह वगैरह। तो हम लोग ऐसे भावना पूर्वक जो प्रार्थना है, जो आचार्यों द्वारा संस्तुत है, दिया गया है, विधि है, तो उसको हम पालन करना चाहिए। तो उसके बाद ये अटलांटिक के बाद सीधा प्रभुपाद जी लगभग 13 सितंबर को तो प्रभुपाद जी एक प्रार्थना लिखे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना। तो सबसे पहले वे बोलते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण का कृपा है, केवल राधा रानी का कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान को हम लोग डायरेक्टली नहीं अप्रोच कर सकते। तो भगवान को भगवान तक पहुंचने के लिए तो हमें कोई किसी के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो राधा रानी और बलराम जी प्रमुख गुरु तत्व बताए गए हैं। तो उस प्रकार से सबसे पहले राधा रानी का कृपा के लिए वो बोलते हैं कि राधा रानी का कृपा के बिना कोई भी कृष्ण भगवान को नहीं समझ सकता है। फिर गुरुवर बोलते हैं जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जो कि चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं, बहुत निजीगण हैं, तो उनको प्रार्थना करते हैं कि उन्हीं की इच्छा से। तो श्री प्रभुपाद जी को जब प्रथम बार मिले थे तो प्रभुपाद जी को उनके गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम एजुकेटेड हो, तो तुम पाश्चात्य देशों में इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक को ये जो श्रीमद् भागवतम का सनातन धर्म का संदेश है वो दे के आओ। तो बोलते हैं आगे प्रभुपाद जी की श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज जी का कृपा से ही ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है, जो ये भगवत नाम है, कृष्ण प्रेम है, तो ये पूरा विश्व में फैल जाएगा और फ्लड हो जाएगा और बाढ़ जैसे आ जाएगी। उसके बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं तो अयोग्य हूँ ये कार्य पूरा करने के लिए, तो आप मुझे चुने हैं तो शक्ति बल बुद्धि तो आप ही प्रदान करना पड़ेगा। और देखते हैं एक अब कंक्लूजन में क्या बोले प्रभुपाद जी। बोलते हैं कि आज भगवान आपकी मुझे बहुत याद आ रही है और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं आपका ही नित्य दास हूं और मेरा कोई भी नहीं है इस संसार में, और अगर आप ही सफलता दिलाना चाहें तो ही सफलता हो सकती है। कि सोचिए आप प्रभुपाद जी एक तरह से इतना वृद्धावस्था, प्रभुपाद जी 70 साल हो गया था प्रभुपाद जी का यात्रा के दौरान ही, तो इतना वृद्ध अवस्था में, असहाय अवस्था में, जेब में थे प्रभुपाद जी के 40 रुपए और ऐसी स्थिति में वो केवल श्रीमद् भागवतम का सेट लिए हुए थे, तो श्रीमद् भागवतम के कुछ सेट लेके और बोले कि लेकिन मेरे को आपकी वाणी पे, आपके नाम पे संपूर्ण विश्वास है, तो इसलिए मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूँ। नहीं तो कोई भी कहेगा कि तो एकदम इम्प्रैक्टिकल है, तो कुछ योजना नहीं है, कैसे जाएंगे, क्या हिसाब किताब है। तो उसके बाद 17 सितंबर को प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंच गए फाइनली। ये था करीब 35 दिन का यात्रा, 35 दिन प्रभुपाद जी जहाज में ही रहे। तो आजकल तो इतना सुविधा है, सीधा भक्त लोग या जो भी प्रचार के लिए जाते हैं तो दिल्ली से न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट भी जाता है, 30 घंटा करीब लगेगा, नहीं तो यहाँ से यूरोप होके जाएगा तो 12 घंटा, फिर कुछ होल्ड, मतलब 24 घंटा में पहुंच जाते आराम से। प्रभुपाद भी जा सकते, उस समय भी विमान जाया करते थे, किंतु तब था लक्ष्मी का था, आप पढ़े होंगे प्रभुपाद लीलामृत में बताया गया है कि प्रभुपाद जी अकाउंट रखा करते थे अपने पास, कितना लक्ष्मी है, 200 रुपया, 500 रुपया, 1-1 रुपया भी बचाते थे। एक छोटा सा ये बात बताते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी यहाँ से वृंदावन से, बात के समय की बात है, वृंदावन से एक बार कुछ ये तार भेजना था, कुछ मैसेज भेजना था। उस समय एक्चुअली फ़ोन वोन भी नहीं था, मोबाइल तो होता ही नहीं था क्या, फ़ोन करने के लिए लोग यहाँ से दिल्ली जाया करते थे। तो ऐसी ऐसी स्थिति थी, ऐसा ऐसा समय था, सीमेंट भी नहीं होता था, सीमेंट के लिए भी स्पेशली क्या कहते हैं तो परमिशन लेना पड़ता था, बहुत प्रकार प्रकार की समस्याएँ थी। तो प्रभुपाद जी तार भेजने के लिए उन्होंने कहा कितना पैसा लगेगा, बोले 25 पैसा लगेगा। फिर प्रभुपाद जी उसको तुरंत बुलाए, बोले रुको रुको रुको, ये पोस्ट कार्ड ले लीजिए, पोस्ट कार्ड 15 पैसे लगेंगे, तो 10 पैसे का हम बचाव करना चाहिए। तो एक और कोई बताते हैं, ऐसे मायापुर में प्रभुपाद जी घूम रहे थे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए डेली जाया करते थे, सुबह एक घंटा शाम को एक घंटा। तो सुबह में जाके प्रभुपाद जी थोड़ा थक गए, तो बोले कि अभी रिक्शा से या ऐसे वापस जाया जाए। तो रिक्शा वाला 15 रुपये मांग रहा था, तो प्रभुपाद जी उसके साथ हट कर रहे थे, बोले कि नहीं मैं 500 रुपये ही दूंगा केवल। तो मतलब प्रभुपाद जी तो चाहें तो, तो ऐसा नहीं कि उनके कहने से तो काफ़ी फॉलोअर्स थे, काफ़ी पैसा दे सकते, लेकिन प्रभुपाद जी बोलते भगवान का एक भी रुपया एक भी पैसा है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, भगवान का सेवा के लिए निहित रहना चाहिए। तो हम लोग को भी अपने जीवन में ये सब आचार्य हैं ना प्रभुपाद जी, आचरण से सिखा रहे हैं हमको, इस बात को ध्यान रखते हुए अपने जीवन में उतारना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। हम तो नकल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुकरण और अनुसरण दो बातें बोली जाती हैं, तो अनुसरण करने का कोशिश करना चाहिए। अनुकरण करने से तो चलेगा नहीं, थोड़ा टाइम वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाएगा इस प्रकार से। तो ये प्रभुपाद जी 17 सितंबर को पहुँचे बोस्टन में। तो बोस्टन में प्रभुपाद जी फिर वहाँ पे इमाइग्रेशन चेक कराए, तो इमाइग्रेशन चेक कराए और 3 महीने का वीज़ा प्रभुपाद जी को मिला पहले, 3 महीने के लिए। तो वहाँ पे एक्चुअल में फिर कैप्टन थोड़ा सा घुमा के लेके आया प्रभुपाद जी को शहर में, और वहीं पे प्रभुपाद जी ने एक और कविता लिखी, उसका नाम लिखा मार्किने भगवत धर्म, मीन्स अमेरिका में भगवत धर्म का प्रचार। तो इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हे भगवान मुझे कैसी जगह ले आए हैं आप, क्या है यहाँ पे। पहली बार ही कोई वैष्णव सन्यासी अमेरिका गया, लंदन तो यूरोप में तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को भेजे थे, बोन महाराज जी जिनका सामने में वो जिटले इनके नाम से, बोन महाराज और एक और का नाम भूल गया माफ कीजिए, एक और भी सन्यासी थे प्रभुपाद जी उनको भेजे थे, वो कुछ संदेश दे पाए थे, एक दो भक्त को दीक्षित भी किया था, किंतु अमेरिका कोई नहीं गया था अभी तक। तो प्रभुपाद जी वैष्णव ड्रेस में कॉटन का धोती था प्रभुपाद जी का, तिलक और सिर मुंडा हुआ था और शिखा रखी हुई थी, चादर डाल रखी थी और छाता था प्रभुपाद जी के पास, एक सफ़ेद रंग की साधारण सी चप्पल थी। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों को तो खैर पता ही नहीं है ये क्या होता है, वहाँ वैसे विचित्र विचित्र लोग रहते थे उस समय, हिप्पी आंदोलन जोरों पे था, तो वो सोचे ये भी कुछ इसी प्रकार के होंगे। तो लेकिन प्रभुपाद जी उनको देख के बोल रहे हैं कि भगवान ये कहाँ आ गया, कैसे आ गया, आप मुझे यहाँ पे लाए हैं तो ज़रूर ही कुछ आपका कार्य होगा, तो मुझे समझ नहीं लग रहा है कि यहाँ रजोगुण और तमोगुण में लैस जो कि जनता है, तो उनको मैं आपका क्या संदेश दूंगा, क्या समझाऊंगा, क्या बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी काफ़ी इस प्रकार से महसूस कर रहे थे। तो कि मैं आपको ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मुख से इस प्रकार के शब्द निकालिए आप, कि जो उनको समझ में आ सके। अब देखिए आप तो आपका स्तर में विद्वान हो सकते हैं, ये तो क्या है कि शिक्षक तो विद्वान है उसमें कोई संशय नहीं, किंतु जो जिसको संदेश देना है उसको समझ नहीं आया तो उसमें तो शिला प्रभुपाद जी गलती नहीं है ना, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो एक्चुअल में प्रभुपाद जी इतने भगवान के सरेंडर्ड थे, इतने भगवान के समक्ष विनीत रहते थे कि, और इतने विनम्र रहते थे कि अहम का लेश मात्र भी नहीं था प्रभुपाद जी में। तो प्रभुपाद जी ऐसी अवस्था में बोल रहे हैं कि पूरी तरह से मैं अब यहाँ आया हूँ, तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ मैं, तो आप जैसे नाचना चाहेंगे मैं वैसे नाचूँगा, अब आप भी मुझे सफलता दीजिए, आप ही ने मेरे को ये मेरे को टाइटल मिला है ये जो क्या कहते हैं भक्ति वेदांत का, तो इसका अगर आप चाहें तो ये जो इसकी ये उपाधि है जो, तो इसका नाम सार्थक हो सके। तो इस प्रकार से एक्चुअल में एक और इंसिडेंस आता है, प्रभुपाद जी कृष्णा बुक जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसको रात को प्रभुपाद जी डिक्टाफोन से डिक्टेट करते थे और उसको उनके जो सेक्रेटरी होते थे या ये जिनका काम होता था तो वे उसको सुबह में ट्रांसक्राइब करते थे, मतलब सुन के लिखा करते थे। तो एक बार रात की बात है, प्रभुपाद जी से पूछे उनके शिष्य कि प्रभुपाद जी रात को वो डिक्टाफोन में कुछ भी नहीं था तो कल आपने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो प्रभुपाद जी बोले कि हाँ कल रात को कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं बोले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान एक्चुअल में स्वयं ही एक्चुअल में ना भक्तिया होता है। तो ये जो भगवान एक्चुअल में ये जो भगवान के बारे में बताना है या भगवान का ज्ञान है, और आदि गुरु किसको कहा जाता है, कृष्ण भगवान ही स्वयं आदि गुरु हैं। तो कोई ये जो जिसको बोलते हैं बद्ध जीव है, तो बद्ध जीव एक मुक्त जगत का मुक्त व्यक्ति के बारे में भगवान के बारे में किस तरह से बोल सकते हैं। मान लीजिए अंधे व्यक्ति हैं तो अंधे व्यक्ति किस प्रकार से कुछ बता सकते, छोटा सा कहानी यहाँ बताएंगे हम। जैसे मान लीजिए एक बार क्या हुआ, काफ़ी अंधे व्यक्ति थे तो उनसे पूछा गया कि हाथी किस प्रकार से होता है, तो उनको हाथी दे दिया गया। अभी एक ने हाथी का पूंछ पकड़ा था तो बोला ये तो रस्सी के समान होता है, एक ने हाथी का पेट पकड़ा तो बोला कि ये तो एक कुछ बहुत बड़ा आकार के समान है, एक ने हाथी का सूंड पकड़ा, एक ने हाथी का जो टस्क होती है जो दांत होते हैं तो बोला कि ये तो बहुत पैना और नुकीला होता है, तो एक ने हाथी का टांग पकड़ा तो बोले तो स्तंभ के समान होता है। तो उसी प्रकार से अंधा व्यक्ति है या जो अभी बद्ध जीव है तो भगवान के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो एक ही उपाय है कि बोलते भी हैं, शास्त्र में भी संस्तुत किया जाता है, आदौ गुरु पादाश्रयम, सबसे पहले गुरु का आपको चरणों का आश्रय लेना चाहिए, उसी के बाद ही वास्तव में कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं। जब तक आप सोच रहे कि मैं और मेरा का भावना है मैं कर लूँगा ये, तो तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो प्रभुपाद जी फिर ये 19 सितंबर को वही शिप से आगे न्यूयॉर्क पहुँच गए थे। तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी उतरे और पेंसिल्वेनिया में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे यहाँ पे अग्रवाल जी, तो उनके बेटे ने स्पॉन्सर किया था वहाँ पे, तो उन्होंने भेजा किसी को प्रभुपाद जी को लेने के लिए। प्रभुपाद जी बाहर निकल रहे थे न्यूयॉर्क फायर से, तो बोले कि दाएं जाना है या बाएं जाना है तो मुझको पता नहीं है, अजीब सा जगह है, तो कोई लेने के लिए आया प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपना मतलब अमेरिका में जो आगमन था वो संपूर्ण हुआ। और प्रभुपाद जी ने वहीं से ही जो अपना मिशन था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद जी कैप्टन पांड्या को सबसे पहले 3 सेट भागवतम के डिस्ट्रीब्यूट किए, बेच दिए और $20 प्रभुपाद जी ने उनसे ले लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय, जलदूत यात्रा की जय। तो अभी हम भागवतम श्लोक पढ़ते हैं। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जैवम उदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 21 श्लोक संख्या 38 सभी दोहराइएगा। ब्रह्मण्य देवः पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिश्च
चरणा अभिवंदनात् अवापा लक्ष्मीं अनापायनीं यशो जगत पवित्रं च महतं माग्रणहि ब्रह्मण्य देवः पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिश्च चरण अभिवंदनात् अवापा लक्ष्मी अनपायनीं यशो जगत पवित्रं च महतं माग्रणहि। बोलिए तो ब्रह्मण्य देवा पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिश्चरणा वंदनात् अवापलक्ष्मी मन पायनीं यशो जगत पवित्रं च महतं माग्रणहि। ब्रह्मण्य देवा पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिश्चरणाभिवंदनात् अवापलक्ष्मी मन पायनीं यशो जगत पवित्रं च महतं माग्रणहि। ब्रह्मण्य देवा पुरुषा पुरातनो पुरुषा पुरातनो नित्यं हरिश्चरणाभिवंदनात् अवापालक्ष्मी मन पायनीं यशो जगत पवित्रं च महतं माग्रणहि। ब्रह्मण्य देवः ब्राह्मण संस्कृति का स्वामी, पुरुषा परम पुरुष, पुरातन सबसे प्राचीन, नित्यम शाश्वत, हरि भगवान, यत जिसका, चरण चरण कमल, अभिवंदनात् पूजा के द्वारा अवाप प्राप्त किया, लक्ष्मी ऐश्वर्य अनपायनी निरंतर, यश ख्याति जगत विश्व का, पवित्रम पवित्र करने वाली, च भी महत महान, तम सर्वाधिक परम, अग्रणी सर्वोपरि प्रथम। अनुवाद आप बोलिएगा। पुरातन शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों में अग्रणी श्री भगवान ने अपनी ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तात्पर्य शिलाभे चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परम पुरुष को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। ब्रह्मण्य का अर्थ है ब्राह्मण वैष्णव अथवा ब्राह्मण संस्कृति और देव का अर्थ है पूज्य भगवान। अतः जब तक कोई वैष्णव के दिव्य पद पर या सतगुण पद पर बाह्य ब्रह्म के रूप में नहीं होता, तब तक वह भगवान को नहीं समझ सकता। रजो तथा तमोगुण की निम्न अवस्थाओं में तो भगवान को समझ पाना और भी कठिन होता है। अतः यहाँ पर भगवान को ब्राह्मण तथा वैष्णव संस्कृति वाले व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्चे विग्रह द्वारा पूज्य अर्चा विग्रह बताया गया है। विष्णु पुराण में दिया गया है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मणा हिताय च जगतिस्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवान कृष्ण ब्राह्मण संस्कृति तथा गो के आदि रक्षक हैं। इनको जाने और इनका सम्मान किए बिना ब्रह्म ज्ञान समझ में नहीं आता, और इस ज्ञान के बिना कोई भी कल्याणकारी कार्य या मानवतावादी प्रचार कार्य नहीं किया जा सकता। भगवान पुरुष या परम भोक्ता होता है। वह भगवान न केवल अवतार लेने पर भोक्ता है, वरन शाश्वत अनादिकाल से वह ऐसा ही करता आ रहा है। यत चरणा अभिवंदनात्। ऋतु महाराज ने कहा कि भगवान को यह शाश्वत ख्याति रूपी ऐश्वर्य ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, वरन ब्राह्मणों के चरण कमलों की निरंतर पूजा से मिला है। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान को भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे निरंतर परिपूर्ण रहते हैं, अतः उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने यह ऐश्वर्य ब्राह्मणों के चरण कमलों की सेवा करके प्राप्त किया है, ये उनके आदर्श कार्य हैं। जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तो उन्होंने नारद के चरण कमलों पर अपना मस्तक रखा था। जब सुदामा विप्र उनके घर आए तो उन्होंने उनके चरण धोए और अपनी शैया में लिटाया। श्री भगवान होते हुए भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर तथा कुंती का आदर किया। भगवान के आदर्श आचरण हम सबों को शिक्षा देने के लिए होते हैं। हमें उनके व्यक्तिगत आचरण से सीखना चाहिए कि किस प्रकार गौवों की रक्षा की जाए, किस प्रकार ब्राह्मणों के गुण विकसित किए जाएं, और ब्राह्मणों तथा भक्तों को किस प्रकार आदर किया जाए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, यद्यद आचरति श्रेष्ठतरो तत्तत्तेव तरो जना। महापुरुष जिस जिस तरह आचरण करता है उसका अनुकरण स्वयं ही लोग करते हैं। भला भगवान से बढ़कर महापुरुष अन्य कौन हो सकता है, और किसका आचरण उनसे अधिक आदर्शमय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता थी, अपितु संसार को आचरण सिखाने के लिए ये सारे कार्य संपन्न किए गए। यहाँ पर श्री भगवान को महत्तम अग्रणी ही कहा गया है। इस संसार में महत्तम अर्थात महापुरुष तो ब्रह्मा जी तथा शिव हैं, किंतु वे इनसे भी ऊपर हैं, नारायणा परो व्यक्तात्। श्री भगवान इस संसार में उत्पन्न की गई समस्त वस्तुओं के ऊपर दिव्य स्थिति में हैं। उनका ऐश्वर्य धन सौंदर्य ज्ञान त्याग तथा ख्याति सभी जगत पवित्रम अर्थात सभी सारे संसार को पवित्र करने वाले हैं। हम जितना ही उनके ऐश्वर्य के विषय में बातें करते हैं यह संसार उतना ही अधिक पवित्र हो जाता है। इस संसार में भौतिक व्यक्ति का ऐश्वर्य स्थिर नहीं है। जो आज धनी है वह कल दरिद्र हो सकता है, जो आज विख्यात है कल अप्रसिद्ध बन सकता है। भौतिक ऐश्वर्य कभी स्थिर नहीं रहता, किंतु भगवान के छहों ऐश्वर्य ना केवल आध्यात्मिक जगत में वरन इस भौतिक जगत में भी शाश्वत हैं। भगवान का यश स्थिर है और उनके ज्ञान ग्रंथ भगवद गीता का आज भी आदर होता है। भगवान से संबंधित सारी वस्तुएं शाश्वत हैं। तो वर्तमान श्लोक, तो इस अध्याय का थोड़ा सा बैकग्राउंड हम पे बात करेंगे। तो ये महाराज पृथु राज्य अभिषेक होने के बाद में कुछ उपदेश दे रहे हैं। तो पृथु महाराज के बारे में दो शब्द, क्योंकि अध्याय तो पहले से चल रहा है किंतु कुछ लोग अभी आज ही आए होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। तो पृथु महाराज वैसे तो जीव तत्व हैं, किंतु भगवान का शक्ति का आवेश है उनके अंदर, तो ऐसे व्यक्ति को शक्त्यवतेश अवतार कहा जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में भी देखते हैं, जो प्रभुपाद जी ने कार्य किया है जो भूतकाल वर्तमान भविष्य में शायद ही कोई कर पाएगा। जैसे प्रभुपाद जी को भी भगवान का एक स्वयं एम्पावर्ड एक शक्ति अवेश अवतार कहा गया है। तो महाराज पृथु के पिता थे राजा वेण, और ये परंपरा चलती है। उनके पिताजी थे राजा अंग और माता का नाम था सुनीता। तो ये एक्चुअल में परंपरा चलती, वास्तव में परंपरा चलती आ रही थी ध्रुव महाराज जी से। तो ध्रुव महाराज जी मनु जी के संतान हैं, और मनु जी ब्रह्मा जी के, उस प्रकार से ये जो परंपरा आ रही थी। तो इसमें जो राजा अंग थे वे तो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, जो इनके हमारे पृथु महाराज जी के परम पिता। किंतु उनके पिताजी थे राजा वेण, तो वे बहुत दुष्ट और बहुत निर्दयी राजा थे, आततायी थे, अत्याचारी, टायरेनिकल बोलते, जैसे हमारे भारत में औरंगजेब हुआ करता, इस प्रकार से बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। वो छोटे में बालकाल से ही जो बच्चों के साथ खेलते थे वो खेल खेल में उनको मार देते थे, इस प्रकार का उनका आचरण था। तो कोई सोच सकता है कि इतनी उत्तम परंपरा में, इतने उत्तम वंश में, इस प्रकार का एक आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कैसे जन्म ले लिया। तो भागवतम में प्रभुपा जी लिखते हैं कि स्मृति शास्त्र के अनुसार बोलते हैं नराणाम मातुला कर्मा। तो बोलते हैं कि जो पुत्र होता है तो वो माँ का गुण लेता है, और माँ का जो उनका मातुल परिवार है, नाना का परिवार बोलते हैं, तो उस परिवार का सारा गुण उसमें आता है। तो जो सुनीता थी राजा अंग की पत्नी, तो वे एक्चुअल में जो मृत्यु है, मृत्यु की पुत्री थी, तो इसलिए वेण में सारे वो दुर्गुण आ गए। वेण इतना निर्दयी था कि जब वो राजा बना तो वो एक्चुअल में इतना पीड़ित करता था सभी को, उसके पिताजी दुखी हो गए। और एक तो उनकी पत्नी है सुनीता, वो मृत्यु की पुत्री, ऊपर से पुत्र इस प्रकार से, तो राजा इतने परेशान हो गए कि वो दुख दुख में ही उनको इतना वैराग्य आ गया कि वो रात को ही, वो नींद आना बंद हो गया, रात को ही वो अपना ये जो राज्य है तो छोड़ छाड़ के वो लोग वो चले गए, जंगल में चले गए। तो आगे बताते हैं कि जो राजा अंग थे वे सोच रहे थे कि इस प्रकार से पुत्र होना तो, और इस प्रकार की स्थिति मिलना, पहले काफ़ी जब व्यक्ति को कुछ दुख मिलता है तो वो अचानक कुछ वस्तु अगर प्राप्त करना चाहता है, जो भी है सांसारिक वस्तु, वो नहीं मिलने से उसमें चेष्टा करेगा पहले, तो मिल जाएगा तो प्रसन्न हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा। दुखी होके वो विचार करेगा, सोचेगा कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे हो जाता तो ठीक था। तो किंतु कुछ सोच रहे हैं कि इस प्रकार से परिस्थिति बन गई, मेरा पत्नी इस प्रकार से है, पुत्र इस प्रकार से है, ऐसी परिस्थिति बन गई है, तो वो काफ़ी उसके अंदर वैराग्य जाग गया। तो वैराग्य में उसने सोचा ठीक है, भगवान की इच्छा होगी, भगवान की कृपा होगी, ऐसा करके वो जंगल की ओर चला गया, और बोलते इसी जन्म में उसने भगवतधाम प्राप्ति कर ली। तो उसके बाद ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि राज्य तो इस प्रकार से हम खाली नहीं रहना चाहिए बिना राजा के, बिना शासक के, क्योंकि चोर उचक्के ये लोग काफ़ी एक्टिव होके प्रजा को यंत्रणा दे रहे थे। तो ठीक है, राजा वेण को राज्य नियुक्त किया गया, किंतु उसके अत्याचार और बढ़ते गए, क्योंकि जो बोलते हैं प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चरित्र आपको परीक्षा करना है तो उसको आप शक्ति दे दीजिए, पावर दे दीजिए। तो एक बंगला में बोलते हैं कि जे जाए लंका से होए रावण, मतलब कि जो भी पहले सभी बोलते हैं अच्छे हैं, ये है वो है ऐसे, किंतु कुछ शक्ति देने के बाद, कुछ योग्यता क्षमता देने के बाद वो दूसरे चेंज हो जाते हैं। तो जो व्यक्ति क्षमता और शक्ति मिलने के बाद भी अपना जो धर्म है, आचरण है, तो उस पर निष्ठ रहता है, तो वो बहुत अच्छा चरित्र का व्यक्ति है। जैसे बताते थे श्रीला प्रभुपाद जी के समय में, श्रीला प्रभुपाद जी गए थे, हम अभी चर्चा ही किए थे, प्रभुपाद जी किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति, बहुत पूरी तरह से हरास हो के भारतवर्ष में उनको कोई सफलता नहीं मिला, और आपको तो उनका कब कहानी जानते होंगे किस प्रकार से पूरा उम्र ही स्ट्रगल रहा प्रभुपाद जी का। उसके बाद ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहाँ जाके एकदम उनको धीरे धीरे
एक तरह से पूरा विश्व के गुरु के रूप में सम्मान मिला, इतने फॉलोअर बने, पूरा देश विदेश सभी जगह 14 बार प्रभुपाद जी पूरा पृथ्वी में घूमे, 108 मंदिर बनाए, अनंत शिष्य, और जो बोलने से पहले प्रभुपाद जी का कार्य हो जाता था। तो प्रभुपाद जी को ज्योतिष ने बताया था इनका हुक्म चलेगा, प्रभुपाद जी का जो भी ऑर्डर देंगे सीधा चल जाएगा। तो इतना शक्ति था प्रभुपाद जी का, लेकिन 70 साल तक कुछ नहीं पता था, सब हिडन 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 भगवान सब दबा के रखे थे, 10 साल में इतना प्रकाशित कर दिया। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए, ऐश्वर्य शौर्य मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा उससे उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, प्रभुपाद जी जैसे पहले रहते थे वैसे रहते सिंपल व्यक्ति। क्यों? क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार जिस व्यक्ति ने करा हुआ सेल्फ रियलाइज्ड है, जो साक्षात्कार कर चुके तो वो इस स्तर में नहीं है, जो भौतिक स्तर में जो व्यक्ति होता है उसको मान लीजिए अनंत पैसा मिल जाए, बहुत सुंदरी स्त्री मिल जाए और कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए तो उसको नहीं पचा नहीं पाएगा, तो उसका कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, क्षमता नहीं है, तो उसे विचलित हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे बताया गया था कि भगवान चूंकि तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है किंतु फिर भी वो ब्राह्मण और वैष्णवों को गाय को रक्षा करे सेवा करे उससे उन्होंने ऐसी परिस्थिति को प्राप्त किया। तो ऐसे क्यों बोलते हैं? तो जैसे आचरण के लिए ही बोलते हैं कि मतलब आचरण से भगवान एक एग्जाम्पल स्थापित कर रहे हैं, तो क्योंकि भगवान को ऐसे करने का जरूरत नहीं है, तो क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति अगर कुछ कार्य करेगा तो वो जो प्रिंसिपल है सिद्धांत है उसको स्थापित करने के लिए भगवान ऐसे किए। तो भगवान तो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, तो भगवान का के लिए कोई कमी भी नहीं है, उनको कुछ भौतिक लाभ भी नहीं चाहिए, तो सब उन्हीं से ही आता है, भौतिक संसार हो आध्यात्मिक संसार हो। तो लेकिन जो ये यहाँ पे सांसारिक व्यक्ति हैं उनके पास षड ऐश्वर्य हो सकते हैं लेकिन कुछ कुछ मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में तो नहीं होंगे और षड के षड भी नहीं होंगे, किसी के पास हो तो भी कुछ मात्रा में होंगे, वो भी पूरा समय नहीं बने रहेंगे, कुछ समय रहेंगे कुछ चले जाएंगे। इसलिए बोलते हैं जैसे किसी के पास धन है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का एक और नाम भी है उसको चंचला कहा जाता है, तो आधा समय ठहरने नहीं वाले किसी को, लक्ष्मी को बांध के कभी भी नहीं रखना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग इंटरनेशनल भिखारी हैं, हमारे पास सुबह इतना धन आता है और शाम तक खाली हो जाता है। एक्चुअल में ब्राह्मण को ऐसे रहना चाहिए, भगवान पे निर्भर, भगवान व्यवस्था करेंगे। अगर हम लोग दबा के रखने लग गए लक्ष्मी को, सेव करके रखने लग गए, तो कलयुग में बताया गया 4 स्थान देने के बाद कलयुग ने एक और स्थान मांगा, मुझे सोने में भी वास चाहिए परीक्षित महाराज से। सोना मतलब तो धन को भी सोना ही कहा जा सकता है, तो इक्वलेंट हो गया ना। तो इसलिए तो वहाँ पे सारा जहाँ भी मान लीजिए किसी संस्था में या परिवार में या व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो यही सब कारण है। अगर इनमें हम अन्वेषण करें, रिसर्च करें, खोज करें या सूक्ष्म विचार से सोचें, तो वो सेवा लक्ष्मी एक्चुअल में नारायण की है, हमारी नहीं है, तो हम उसको अपने पास रखना चाहते हैं अपना भोग के लिए, इस प्रकार से तो हमारा रावण का वृत्ति हो जाएगा, तो रावण भी सीता माता को भोग का दृष्टि से देख रहे थे, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति है, तो भक्तों को सावधान रहने का इससे। तो बाकी किसी का भी ऐश्वर्य है तो वो कुछ समय के लिए रहता है, तो इसलिए जो भगवान है संपूर्ण है। एक और भागवतम में जनक महाराज जी का बताया जाता है शासन के लिए, तो इतना उत्तम शासन करते थे जनक महाराज। पृथु महाराज जी का आता है कि पृथु महाराज जी जैसा कोई भी शासक नहीं हुआ, इतना अच्छा से शासन करते थे और सभी बहुत प्रसन्न रहते थे। वास्तव में जो प्रजा है, जो राजा का कार्य है प्रजा का देखभाल करना, प्रजा का अर्थ बोलते हैं प्रजायते इति प्रजा, प्रजायते मतलब जो जन्म लिया है, तो राजा वास्तव में भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। पहले देखिए अभी युग एक्चुअल में निकृष्ट होता जा रहा है, जो ये जो चतुर्युग का साइकिल है या क्रम है, तो उसमें लास्ट ये हम आखिरी युग में है कलयुग में, तो उसमें अवस्था है, व्यवस्था है, जो मानसिकता है सब गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। तो पहले तो देखिए राजा बोले तो भगवान ही स्वयं राजा होते थे, भगवान श्री राम, और नहीं तो भगवान के भक्त द्वापर में भगवान स्वयं राज नहीं किए, कृष्ण भगवान, तो युधिष्ठिर महाराज जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे उनको सम्राट बनाया, और पूरा महाभारत का युद्ध इसलिए करवाया गया कि दुर्योधन को नहीं भगवान राज्य देना चाहते थे और युधिष्ठिर महाराज को चाहते थे, और भगवान ही चाहते थे युद्ध कराना। तो कोई सोच सकता है कि ये जो हिंसा है ये ठीक नहीं है, और तो हम लोग आध्यात्मिक सभ्यता से हैं, सनातन धर्म से हैं, तो ये जो वैष्णवों के गुण हैं, ब्राह्मणों के गुण हैं, क्षमो दमो, तो हम पढ़ें ये
चर्चा करेंगे थोड़ा,
तो हमको इस प्रकार से आचरण करना चाहिए, गांधीवादी बनना चाहिए, तो ये उचित नहीं है। एक्चुअल में जो क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय का मतलब है क्षत त्रायते इति क्षत्रिय, जो कमजोर व्यक्ति को क्षति होने से रक्षा करे, त्राण करे, उसको पालन रक्षा करे, उसको क्षति से उभारे, तो वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय बलशाली होना चाहिए, जो राजा है, प्रशासक है, उसको बल तो लेना चाहिए ना, तो उस बल से उसको प्रजा का रक्षा करना चाहिए। जो प्रजा है वो राजा के लिए संतान के समान है। प्रजा मतलब केवल मनुष्यगण ही नहीं, तो जो भी जीव है, तो भगवान का ही सृष्टि है, भगवान का ही ये ग्रह है, लोक है, तो जो भी जीव है किसी भी योनि में, जलचर हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु पक्षी हो, सभी राजा के लिए संतान के समान है। तो एक रामायण में एक कहानी आती है, समय थोड़ा कम है तो ब्रीफ में बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि एक बार एक जब राजा राम सभा लगाते थे तो पूछते थे कि किसका क्या क्या परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो बोले कि आज कोई नहीं है प्रॉब्लम के लिए। एक्चुअल में अभी आजकल होता है जैसे मंत्री हैं उनके पास लोग जाते हैं अपना प्रॉब्लम के लिए, इस तरह से ये तो शुरू से समय में चला आया। तो बताया कि आज तो कोई भी नहीं है, तो लेकिन भगवान तो परमात्मा है, सब जानते हैं। तो नहीं नहीं किसी का प्रॉब्लम है, आज तुम ठीक से देख के आओ द्वारपाल को का। द्वारपाल फिर आके बोलता है कोई नहीं है भगवान, आज किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं नहीं अपने किसी निजी को भेजते हैं, मंत्री आप देख के आइए। तो बोले कि हाँ महाराज, एक कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है। तो वो कुत्ते का कुछ शिकायत था। तो कहानी आगे नहीं बताता हूँ, इतना ही जस्ट यहीं तक रोक देते हैं। तो एक्चुअल में भगवान सभी के लिए, सभी का हित के लिए सोचते हैं। फिर उसके बाद एक कृष्ण लीला में कहानी आती है जिसमें वो महाविष्णु जी कृष्ण भगवान को और अर्जुन को दर्शन करना चाहते हैं। तो एक किसी उनके नागरिक के हैं, वो बच्चे को वो क्या कहते हैं, जितने भी संतान होती थी उसको भगवान मृत कर देते थे। तो एक्चुअल महाविष्णु जी चाहते हैं तो भगवान अपना हिसाब से लीला करते रहते हैं। तो कुछ कारण होता है हर चीज़ के पीछे, हमको समझ में नहीं आता है, कभी कभी बाद में आता है, कभी भी नहीं आता है। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पे तो कृष्ण भगवान शांत रहे, लेकिन अर्जुन बोल रहे कि कौन है ऐसे इस राज्य में, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं देखता हूँ। और काफ़ी गर्व कर रहा था अर्जुन, क्योंकि भगवान के भक्त तो कभी कभी गर्व करने लग जाते हैं, तो भगवान पसंद नहीं करते हैं इस चीज़ को। तो फिर कुछ ना कुछ लीला करके उनका गर्व को भगवान को कम करना पड़ता है। तो उस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि नहीं, अगर इस बार तुम्हारे पुत्र को नहीं बचा सका मैं, तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। तो भगवान अब भक्त के वचन का रक्षा के लिए, भक्त का रक्षा के लिए, तो ठीक है भगवान फिर एक्टिव हो जाते हैं। तो भगवान पहले साइलेंट बैठ के, मूक बैठ के देखते रहते हैं कि जीव क्या कर रहा है किस प्रकार से। तो उस बार भी पुत्र खत्म हो गया, तो भगवान बोले ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उसको खोज करके आते हैं, इस तरह से। खैर वो कहानी दूसरा हो गया। तो यहाँ पे फिर हम लोग इसी श्लोक में जो भगवान बताए हैं कि किस प्रकार से गाय का, ब्राह्मणों का, वो ब्राह्मण संस्कृति का रक्षा करना चाहिए, ये भगवान अपने आचरण से, अपने स्वयं जीवन में उतार के इसको समझा रहे हैं। अब शिला प्रभुपाद जी 1975 में इंदिरा गांधी से भेंट किए थे, तो उस समय इमरजेंसी लग गया था, तो मीटिंग इतना सफल नहीं हो पाया था, जस्ट मिले ही थे और लेकिन वो कार्य हो नहीं पाया था संपूर्ण। उसमें प्रभुपाद जी ने उनको 10 प्रपोजल दिए थे, एक रिक्वेस्ट दी थी। तो उसमें प्रभुपाद जी ने कहा था कि जो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं देश के, हर लगभग 534 कुछ हैं, तो उसका गणना होती है लगभग हर 16 लाख व्यक्ति पे एक एमपी का सीट रहता है। तो इतने 16 लाख लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस प्रकार से पूरे देश के 534 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो प्रतिनिधि हैं, तो वे लोग सभी दीक्षित ब्राह्मण होने चाहिए। क्योंकि जो ब्राह्मण है वो एक्चुअल में मस्तिष्क है, जो जैसे शरीर हमारा चार भाग में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं, मस्तिष्क, हाथ, उदर और पैर, तो उसी प्रकार से ये जो समाज है, तो इसको भगवद्गीता में भगवान बोलते हैं
चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश्च। तो गुण और कर्म के आधार पे जो भगवान ने निर्धारित किया है, केवल जाति से नहीं, जिस प्रकार से आज अपवाद फैल गए हैं समाज में, कोई जाति लगाने से कह देगा कि ब्राह्मण है, हो सकता है ब्राह्मण परिवार से हो, ब्राह्मण का गुण भी हो, किंतु जाति से ये कहना, केवल जाति से ही कहना उचित नहीं है। तो भगवान बोले उनके गुण देखने चाहिए, किस प्रकार से उनके गुण हैं, कर्म किस प्रकार से कर रहा है। ये भी नहीं कि वो बोल रहा है कुछ कि हाँ यज्ञ भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और एक्शन में एकदम दूसरा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो शैतान है तो वो भी शास्त्र बोल सकता है। तो काफ़ी मतलब उदाहरण आते हैं, जैसे कंस का ले लीजिए आप, तो कंस भी जब ये देवकी को वध करना चाह रहे थे तो ये भगवान उनको मना किए, तो वो भी बहुत प्रवचन देने लग गए, कंस भी बहुत प्रवचन देने लग गए कि आत्मा है, ये ऐसे है, वैसे है, किंतु जब अपनी जान पे बनी तो अपनी बहन को, जिसको नव विवाहिता है, आज उसका विवाह हुआ, उसी को ही वो हत्या करना चाह रहे थे। और रावण भी है, तो रावण भी कार्य में तो इस प्रकार से किया, किंतु जब वो था तो बहुत ज्ञानी था, पंडित था, तो किंतु जब वो शैया पे लेटा हुआ था तो जाके उस समय बहुत प्रवचन दे रहा है। वैसे भगवान ने भी भेजा था लक्ष्मण को कि आप सुन के आओ क्या क्या बोलता है। तो उस प्रकार से जानना तो अच्छी बात है, भारतवर्ष में वैसे ही सभी जानते हैं, उसको कहा जा सकता है ज्ञान पापी हैं, सब जानते हैं, रिक्शा वाला भी हो तो वो भी बात कर लेगा, ये भी बात कर लेगा, सभी सुने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो भगवत चर्चा ये सब वो सब होता रहता है, किंतु आचरण बहुत जरूरी है। तो आचरण नहीं होने से तो वो उसमें शक्ति नहीं आएगा, और जो ब्राह्मण होते थे पहले उसमें शक्ति भी होता था। जब राजा वेण की बात कर रहे थे तो राजा वेण जब अपने अत्याचार करता जा रहा था तो जो ये संतों का सभा था तो उन्होंने राजा वेण को मृत्यु का श्राप दे के उसको खत्म कर दिया। तो जो ब्राह्मण के गुण हैं तो हमको कैसे हम पहचान सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो आधार है श्रीमद् भगवद गीता, तो उसमें 18वें अध्याय में श्लोक आया है, क्षमो दमो तपो शोचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षमो मतलब शांतिपूर्ण, तो जो ब्राह्मण है वो शांतिपूर्ण होता है, उसमें क्रोध नहीं होगा, समभाव में रहता है। दमो मतलब इंद्रिय संयम करके रहेगा, तपस्या उसके स्वभाव में होगा, वचन से तपस्या, मन से तपस्या, शरीर से तपस्या। शोचम अर्थात शुचि और पवित्रता। ख्यांति, ख्यांति मतलब सहिष्णुता, सहन करने का शक्ति, सहनशीलता। आर्जवम मीन्स सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा। ज्ञानम मतलब उसको ज्ञान रहता है किसी बात का, थ्योरिटिकल नॉलेज। विज्ञान मतलब ज्ञान का अनुभव भी है, धर्म निष्ठा भी है, धर्म धार्मिक है। तो ये ब्राह्मण के गुण हैं, ब्राह्मण इन्हीं गुणों में कार्य करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति हमें चाहिए कि वो देश को या जो समाज को एक दिशा दे, निर्देश दे। और जो राजा है तो उनका एक ब्राह्मण सभा होता था, उसी से वो निर्देश लेके कार्य किया करते थे। तो इस प्रकार से आजकल प्लानिंग कमीशन है तो उससे वो एडवाइस लेके करते हैं, एडवाइज़र होता है, ये होता है, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बताते हैं कि जो ब्राह्मण संस्कृति है, गाय का रक्षा करना है, ब्राह्मण वैष्णव की सेवा करना है, इसी को आधार बनाए हुए यदि हम अपनी योजना है जो समाज की, संसार की, नहीं करेंगे तो एक तो हम पहली बात ये ना जानने से हम भगवान के विज्ञान को भी नहीं जान सकेंगे। क्योंकि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में ब्राह्मण के लिए कोई स्थान नहीं है, ब्राह्मण के लिए कोई समझ नहीं है, और गाय का जहाँ पे हत्या होगा तो भगवान, क्योंकि जब पीछे अध्याय में आता है, जब पृथु महाराज जी धरती को दंड देना चाह रहे थे क्योंकि धरती कुछ उपज कम कर रही थी, आप लोग पढ़े होंगे, तो धरती गाय का रूप में, समय हो चला है हम बस शेष करने वाले हैं,
तो जो गाय का रूप में आके प्रार्थना करने लगी कि मेरे को अगर आप हत्या कर देंगे तो ये जो पृथ्वी का संतुलन है ये बिगड़ जाएगा। जैसे आप समझते हैं एक समुद्र होता है, समुद्र में नाव तैरती है, तो उसी प्रकार से ये जो ग्रह है भगवान के विश्व रूप में आप देखें तो ये आकाश और वायु का समुद्र है, उसमें एक हमारा छोटा सा ग्रह है पृथ्वी लोग तैर रहा है। तो तैर रहा है तो हम लोग तो यहाँ बैठे हम सोचे कि स्ट्रांग है, सॉलिड है, सब ठीक है, लेकिन ये तैर रहा है, ये भी एक नाव के जैसे है। इस पूरा ब्रह्मांड को अगर आप देखें तो ये आकाश के या वायु के समुद्र में, तो इसलिए ये इसका जो भी सारा बैलेंस है ये सब गोमाता के कारण ही है। ये तो गोमाता अगर नहीं रहेंगे तो ये हमारा पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा। तो इसलिए गाय का रक्षा करना भी ब्राह्मण संस्कृति, इसका रक्षा करना, ब्राह्मणों का सेवा, वैष्णवों का सेवा करना ही हमारा संस्कृति का आधार है। प्रभुपाद जी यही सिखाए हमको, और हम लोग भी ये संस्था प्रभुपाद जी एक्चुअल में बनाए थे, बोले कि ये संस्था हमने बनाया है कि ब्राह्मणों का निर्माण करने के लिए। ब्राह्मण कैसे निर्माण किए जा सकते हैं? कोई तो कहेगा कि नहीं, जाति बाहर के लोग हैं जो जात ब्राह्मण वाले, तो प्रभुपाद जी को निंदा किए, नहीं स्वीकार किए कि इनके ब्राह्मण ये नहीं है, प्रॉपर नहीं है, इस प्रकार से तो ऐसे तो नहीं है। जगन्नाथपुरी में भी आप जानते हैं कि उसको एंट्री नहीं देंगे बाहर के लोगों को, लेकिन जो गुण कर्म से योग्यता अर्जित कर लिए हैं तो उनको तो हम लोग स्वीकार करना चाहिए ना। तो ये जो ब्राह्मण सभ्यता है तो इसको बचा के रखना तो और गाय का रक्षा करना, तो यही हमारा शास्त्रों में ये आधार है। तो इसी को आधार अगर हम ठीक से रखेंगे तो ये जो भगवान का दिया हुआ जीवन है तो ये हम लोग समाज में भी बहुत शांति से और सुख से रह सकते हैं और हमारा जो जीवन का लक्ष्य है उसको भी संपूर्ण कर सकते हैं। तो यहीं पे आज हम शेष करते हैं, समय भी हो चला है। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय।